ओम शांति। मधुबन कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है आज? जैसे दुल्हन सजी हो ऐसा। और कैसे लग रहा है मधुबन? जगमगा रहा है, दमक रहा है। ओम शांति। भवन कैसे लग रहा है? जैसे कोई राजमहल, जैसे कोई दरबार, जैसे कोई राज दरबार। चारों तरफ रोशनी, जैसे विशुद्ध चेतनाओं का केंद्र। मधुबन है ही क्या? शुद्ध संस्कृति का द्वीप। मधुबन क्या है? शुद्ध चेतनाओं का द्वीप, शुद्ध संस्कृति का द्वीप। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है या हो सकता है वो यहां है। ये केवल प्रकाश नहीं है, यह दिव्य प्रकाश है। ये केवल जड़ प्रकाश नहीं है, चैतन्य प्रकाश है, जो अरावली की वादियों को चीरकर कहां पहुंच रहा है? विश्व गगन में। दूर दूर तक इसकी किरणें जा रही है और सारे संसार को जगमगा रहा है। तो ऐसा यह विशुद्ध चेतना का द्वीप जहां हम बैठे हैं, ऐसा ये ओम शांति भवन। कुछ दिन पहले दादी जानकी जी ने क्लास कराई थी ओम शांति भवन में। तब एक जबरदस्त महावाक्य उच्चारण किया था मधुबन के लिए। कौन सा वाक्य था वो? मधुबन को क्या कहा था दादी ने, जिससे ओम शांति भवन भी डोलने लग गया था? कौन सा वाक्य था? माताओं की तरफ से बताओ, कोई किसी को याद होगा तो। क्या कहा था दादी ने, याद है किसी को? अभी अभी क्लास हुआ था ना कुछ समय पहले। क्या कहा था? सिंह गर्जना। सिंह गर्जना कौन सी की थी? क्या शब्द कहा था मधुबन के लिए, याद है किसी को? हम सुनाएंगे तो याद आ जाएगा। दादी ने कहा था ना, मधुबन है मेरे बाप का घर, याद आया ना? क्या कहा था? मेरे बाप का घर। तो ऐसे मधुबन में हम यहां बैठे हैं, जैसे ये दीपावली है, दीपों की आवली। आवली अर्थात पंक्ति, रो, लाइन, दीपों की पंक्ति, कतार, द लाइट ऑफ लैम्प। तो द रो ऑफ लैम्प्स जिसको कहते हैं, ऐसी दीपावली। तो मधुबन कैसे लग रहा है? जैसे कि राज दरबार। तो हम अभी चलते हैं एक दूसरे राज दरबार की ओर। कौन से राज दरबार की ओर? जहां राजा कौन है और राज दरबारी कौन है और दासिया कौन बैठी है उस सभा में, और कौन मुख्यमंत्री है और कौन सी अष्टशक्ति या नवरत्न या फिर अष्ट सहयोगी है, उनको हम देखेंगे। कैसा चल रहा है ये मंत्रिमंडल? संसार में आज तक कितने ही राजाएं हुए, उनके जैसे सम्राट अकबर के क्या थे? नवरत्न थे, बीरबल, तानसेन, तोडरमल। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके भी नवरत्न थे। वैसे ही शिवाजी महाराज है महाराष्ट्र में, उनके अष्ट मंत्रिमंडल, उनके अष्ट मंत्री थे। उसी तरह किसी के पंच मंत्री थे। उसी तरह कृष्णदेव राय एक विजयनगर साम्राज्य में एक शासक हुआ है, कृष्णदेव राय, उसके भी इसी तरह से अष्ट मंत्री थे। किसी के अष्ट, किसी के पंच और किसी के नवरत्न, अलग 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 अलग। तो ये राज दरबार कैसा राज दरबार है ये, जिसमें राजा कौन है? राज्य अधिकारी आत्मा कौन है? राज्य अधिकारी जिसमें आत्मा है। और इसका कारोबार बाबा पूछ रहे हैं, इसके कारोबार का बाबा ने वर्णन किया है। बहुत गहरी मुरली है, बहुत सारे गहरे राज उसमें है। जैसे आज बोला ना, बाप तुमको एक एक राज समझाते हैं। संगठन कैसा है? संगठन कैसा है और मिलन कैसा है? ये रूहानी मिलन है। कैसा मिलन है? प्यारा मिलन है। कैसा मिलन है? अमर बनाने वाला मिलन है। हर बच्चा अमर भाव का वरदानी है। कैसा मिलन है? महान मिलन है। सारे कल्प में अगर महान समय है तो अब है। तो ये है संगम युग। परंतु जब बीमारी की बात चली तो बाबा ने क्या कहा? ये क्या है? कलयुग। ये सब तो आना ही है, परंतु बाप की याद हो तो बीमारी क्या हो जाएगी? सूली से काटा बन जाएगी। तो अभी बताओ, ये संगम युग है या कलयुग है? क्या है? पर बाबा ने तो कहा बीमारियों के समय याद करो, ये तो कलयुग है, ये तो होना ही है। कलयुग और सतयुग का संगम। कौन सा संगठन है ये? प्रभु प्यारों का संगठन है। कौन सा संगठन है ये? वाह वाह का संगठन है। सारी विश्व में ढूंढ के आओ, कहीं मिलेगा ऐसा संगठन? केवल यहां है। उन आत्माओं का संगठन है जो प्रभु प्रेमी है, जो प्रभु प्यार के दीवाने हैं, प्रभु प्रेम में जो मगन है। उनके पास लव रूपी मास्टर की है, जिससे दुर्भाग्यशाली आत्माओं को सौभाग्यशाली बनाते हैं, जिससे किसी की भी भाग्य के लक, लक की ये क्या है? जैसे चाबी है, लॉक की ये चाबी है, लक के लॉक की चाबी, प्रेम। तो वो प्रेम की पूंजी हमारे हृदय में है, मास्टर की, परमात्मा प्रेम। तो ये संगठन है प्रभु प्यारों का संगठन। ये संगठन है महान संगठन। ऐसे संगठन में भगवान आते हैं। परंतु कल क्या देखा बाबा ने? एक राज दरबार देखा। बहुत सारे प्रश्न पूछे, किसी ने निकाला, मुझे कहा 40 प्रश्न है टोटल। 39? अच्छा। तो क्या देखा बाबा ने? राज दरबार को। उससे पहले क्या देखा? मुख्य प्रश्न पूछे बहुत सारे, 7 प्रश्न है। पहले तो आते ही बैलेंस देखा, फिर समानता देखी। किसमें बैलेंस देखा? रूप बसंत। रूप अर्थात योग, बसंत अर्थात ज्ञान। तो ज्ञानी कितने बने हैं और योगी कितने बने हैं, इसका क्या बैलेंस है? फिर बसंत कितने बने हैं और रूप में कितना स्थित है, इसकी समानता। अगर समानता होगी तो ही बैलेंस होगा। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मुरली का आपस में कनेक्टेड है। पहला प्रश्न कहता है बैलेंस है, दूसरा प्रश्न कहता है समानता है। जब समानता होगी तभी बैलेंस होगा। बसंत अर्थात आवाज में आना, और ऐसा ही अभ्यास वाणी से परे जाने का है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, एक तरफ कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए उसकी स्मृति, और दूसरी तरफ आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। एक तरफ कर्म के अधीन स्थिति, दूसरी तरफ संगम युगी, कर्मातीत, कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। जितना देखना, सुनना और सुनाना सहज है, क्या उतना ही समेटने की शक्ति से कर्मेंद्रियों को? अकर्मी कर्मातीत स्टेज का भी अनुभव है। धाड़ 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 बाबा ने प्रश्न पूछना चालू किए। तो एक तरफ ज्ञान, एक तरफ योग, एक तरफ कर्म, एक तरफ कर्मातीत स्टेज, अकर्मी स्टेज, कर्मेंद्रिय स्टेज। एक तरफ कर्म की स्मृति, दूसरी तरफ आत्मिक स्मृति। एक तरफ आवाज, तो दूसरी तरफ आवाज से परे। आज आवाज के लिए क्या कहा बाबा ने? माताओं की तरफ से आज की साकार मुरली आवाज के लिए। आवाज में आना है, गीत गाने हैं कि नहीं गाने हैं? नहीं गाने हैं, प्रीत मित गीत रीत। गीत में क्या कहा था उस मुरली में, बाप की महिमा के और स्वयं के गीत गाओ, स्वयं की महिमा के और बाप की महिमा के गीत गाओ तो अशरीरी बन जाएंगे। आज क्या कहा, महिमा के गीत तो बिल्कुल नहीं गाओ, महिमा करने की दरकार नहीं है, यहां तो तुमको आवाज से परे जाना है। संदर्भ अलग अलग है, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए, अभ्यास करना है अजपा जाप, वो तो जाप करते हैं माला फेरते पर अर्थ नहीं जानते उसका, तुम जानते हो। तो ये राज दरबार में, फिर बाबा राज दरबार की ओर आए और क्या पूछा, कैसा चल रहा है राज दरबार, ठीक चल रहा है, कौन कौन है राज दरबार में, फिर से एक बार, एक तरफ तीन शक्तियां बैठी है, शक्तियों के पीछे अष्ट शक्तियां बैठी है, दूसरी तरफ प्रकृति है, इतने बोले बाबा ने। अब इसमें एडिशन क्या करोगे वो बताओ, पांच कर्मेंद्रिया, पांच तत्व प्रकृति के, प्रकृति और पांच विकार को एकदम पीछे की लाइन में लगा दो, लास्ट में हथकड़ियां डाले हुए है। और कौन थे इस सभा में, और कौन हो सकता है इस सभा में, बाबा ने कहा कचेरी करो, वो तो हो गया ना, तीन शक्तियां अष्ट शक्तियां प्रकृति 36 गुण, सात क्यों, 36 गुण पूरी लाइन से एक तरफ, और किसको लगाएंगे, नहीं किस रूप में है वो, सभा है और कौन, नौ खजाने, नव निधिया का गायन है शास्त्रों में, नव निधिया और अष्ट शक्तियां, अष्ट शक्तियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, हनुमान को वरदान दिया था जानकी जी ने जब अंगूठी दिखाई थी, तो अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां तो पता है, नव निधिया है, कौन कौन सी नव निधिया, हमारी कौन सी निधिया है, ज्ञान गुण शक्ति संकल्प, संकल्प और समय, दुआएं पुण्य कर्म खुशी और पवित्रता, नौ खजाने हैं, खजाने तो अनगिनत है परंतु ये नौ मुख्य है, तो नौ खजाने भी इस सभा में है, और कौन है इस सभा में, सूरज चांद ग्रह नक्षत्र सारे इस सभा में है, तो ये एक सभा इधर हो गई, एक दूसरी भी सभा का वर्णन किया है बाबा ने, वो किसकी सभा है, एक दूसरी भी सभा है, धर्मराज की सभा, धर्मराज का राज दरबार, इधर से उधर, जो रिफाइंड नहीं बने, जिनका यहां ठीक नहीं है फाइन भरने, उधर जाएंगे, फाइन अर्थात सजा, तो वहां पर भी एक है सभा, वहां पर भी धर्मराज बैठा हुआ है, वहां दूसरे प्रकार की सभा है, एक तीसरी भी सभा हो सकती है, वो कौन सी, ये तो ब्राह्मणों का बाबा ने कह दिया, ये संगठन प्रभु प्यारों का है, वाह वाह संगठन है, दैत्यों की सभा, रावण की एक सभा होगी ना, रावण भी तो बैठता होगा अपने विकारों के साथ और उनके मंत्रिमंडल के साथ, पूछता होगा एक एक को कि बोलो काम क्या बहादुरी दिखाई, तो रावण को भी हृदय गदगद हो जाता होगा जब काम कहता होगा 20 साल के ब्रह्मचारी को आज नीचे गिरा कर आया हूं, तो कितना खुश होता होगा रावण भी, लोभ क्या कहता होगा तो रावण को खुश करने के लिए, जो सब कुछ छोड़कर यहां आ गए उनमें भी संसार के वैभव और वस्तुओं के प्रति लोभ उत्पन्न करके आया हूं, तो रावण तो अपने गले का हार निकालकर सीधा उसके गले में डाल देगा, वाह बच्चे वाह, वो भी वाह वाह सभा होगी, जैसे ये वाह वाह सभा है, वो कहेगा कि ऐसी सभा संसार में और कहीं नहीं है, वाह खट्टे बच्चे, उसके लिए तो उसका आखिरी बच्चा भी प्रिय है। जैसे बाप को भी लास्ट बच्चे से भी प्यार है, चाहे पुरुषार्थी है नहीं है फिर भी प्यार है, अति प्यारे है, सिकिलदे है, लाडले है, साधारण है फिर भी लाडले है और प्यारे है और सिकिलदे है, दुलारे, दिल के दुलारे है, वो दिलवर है। तो बच्चे दिल के दुलारे है। क्रोध से लिए क्या कहेगा वो? क्रोध अपना समाचार सुनाएगा, क्या समाचार सुनाएगा? 10 साल का कोई तपस्वी साधना कर रहा था, कौन सा सम्मान लेके, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं लेकर, और आज मैंने क्या पराक्रम करके आया हूं, 10 साल के सम्मान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, चकनाचूर। तो ऐसे को भी मैंने ऐसा कर दिया, तो रावण करेगा वाह बच्चे वाह। अहंकार को क्या कहेगा रावण? अहंकार क्या समाचार देगा अपना? जो दिन रात सेवा में लगे थे, जिन्होंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को भी जीत लिया, ऐसे कुछ बच्चे थे, और जो बेहद की सेवा कर रहे थे, सेवा करते 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 अब ये सोचने लगे कि मैं कर रहा हूं, जो ये समझते हैं कि अपने पुरुषार्थ से चल रहे वो हाथ खड़ा करो, जो ये समझते हैं कि हमारा बाप से प्यार नहीं है वो हाथ खड़ा करो। पूछा ना प्रश्न, कौन चला रहा है? परमात्मा प्रेम चला रहा है। तो जो ऐसा समझते थे, अहंकार क्या कहेगा? मैंने उसमें भी क्या कर दिया, मैंपन डाल दिया। सेवा का समाचार सुनाते सुनाते अब वो सेवाओं के समाचार नहीं रहे, वो मैं के समाचार सुना रहा है। अभी सेवाएं तो बेहद की कर रहे हैं, परंतु समाचार किसका सुना रहे हैं? मैं का। वो सेवाओं का समाचार नहीं है, वो मैं का समाचार किया, मैं का समाचार बता रहे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मोह से क्या कहेगा? मोह क्या कहेगा रावण को? क्या समाचार सुनाएगा अपना? मोह क्या समाचार सुनाएगा? जो वैरागी थे संसार को छोड़कर, सब संसार को छोड़कर जो यहां आ गए, यहां आकर राग उत्पन्न हो गया जिनमें, साधनों में फंस गए, व्यक्तियों में फंस गए, एक दूसरे में फंस गए, नए नए संबंध बनाए, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं, तुम्हारा सबका संबंध एक से है, जैसे बाप एक है परंतु निभाता सबसे है, तुम्हारा केवल एक से ही संबंध है, उस एक को छोड़कर किसी किसी में मोह उत्पन्न हो गया। तो ये थी रावण का, ये था रावण का राज दरबार। बाबा कौन से दरबार की बात कर रहे हैं? अपनी कचेरी करो, जिसमें राज्य अधिकारी है आत्मा। बाबा पूछ रहे हैं कारोबार कैसे चल रहा है, कारोबार ठीक चल रहा है? रोज दरबार लगाते हो? हमेशा दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? दुश्मन जब आक्रमण करता है, जब वार करता है, तब होश में आते हो या हमेशा ही होश में रहते हो? कैसे चल रहा है? प्रजा का राज्य है, प्रजा पर राज्य है या प्रजा राज्य कर रही है? कौन किस पर राज्य कर रहा है, कौन किसको चला रहा है? चलते चलते चलाने तो नहीं लग गए, ख्यानत तो नहीं करने लग गए, मिलावट तो नहीं करने लग गए, धोखा तो नहीं देने लग गए, चलाने तो नहीं लग गए? चारों चीजें पूछिए। माया के मुरीद प्रकृति के लिए क्या है बाबा ने? तो ये प्रश्न पूछे, कैसा चल रहा है ये राज दरबार? उसके बाद में प्रकृति की ओर नजर गई, 5 कर्मेंद्रिया। बाबा हमेशा 5 कर्मेंद्रियों की बात करते, अन्यत्र 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन है, टोटल 10। रूप रस स्पर्श शब्द गंध, रूप आंख, रस जीभ, रस रूप रस स्पर्श त्वचा, गंध नाक, शब्द कान। ये सब कंट्रोल में है, ऑर्डर पर चल रहे, ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं। आंखों को अब भी कुछ कुछ देखने की इच्छा है, कुछ कुछ सुनने की इच्छा है, कुछ कुछ पढ़ने की इच्छा है। उस दिन था ना, कोई अगर देखो फिल्मी कहानियां पढ़ रहा है तो क्या कर दो? फाड़ दो, और 10 साल वो पीछा नहीं छोड़े बाद में तो गुस्सा करेगा, शाप देगा तो भी डरो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं? रस, मास्टर सर्वशक्तिमान आधार अर्थात रस के अधीन नहीं। खाऊं खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, पेट में बलाऊं, इसमें तो नहीं फंसे हैं, रस के अधीन तो नहीं है। शब्द, कान, दूसरी दूसरी अन्य अन्य बातें, उसके अधीन तो नहीं है रस। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियों का वर्णन है शास्त्रों में। पांच कर्मेंद्रिय कौन सी? हाथ, पैर, मुंह, जननेंद्रिय और मल मूत्र विसर्जन के जो अवयव है वो। ऐसे ये पांच कर्मेंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय। तो बाबा पूछ रहे हैं कर्मेंद्रिय कंट्रोल में है, और उसमें भी मुख्य कौन है? तीन शक्तियां। कौन कौन सी शक्तियां है वो? मन, बुद्धि, संस्कार, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और तीसरी संस्कार शक्ति। मन से बात करो, अपने ही मन से बात करो। मन वश में है, भावनाएं वश में है, इंद्रिया वश में है, इच्छाएं वश में है मन। बुद्धि, बुद्धि की निर्णय शक्ति ठीक है? आज मुरली में बोला है बाबा ने, जो फ्रेश बुद्धि है वही इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं, उनकी धारणा अच्छी है, जिनकी फ्रेश बुद्धि है, बुद्धि कैसी है। तीसरा संस्कार, संस्कार शक्ति। बाबा ने कहा ये तीन कौन है? महामंत्री है। क्या क्या दल बदलू तो नहीं है इसके? मौका परस्त, मौका मिलते इधर से उधर, उधर से इधर, माया के मुरीद तो नहीं बन जाते हो? ये मंत्रिमंडल में कोई हलचल तो नहीं है? तो अपने ही मन से बात करना, अपने ही बुद्धि से भी बात करना, अपने ही संस्कारों से बात करना, मन, बुद्धि, संस्कार, और पीछे खड़ी है अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियां सहयोग कब नहीं देगी? जब राजा में तीन अवगुण होंगे। कौन से वो तीन अवगुण बाबा ने बताए? एक है नींद, दूसरा है नाच और तीसरा है नशा। तो कौन सी नींद और कौन सा नाच और कौन सा नशा? सबसे पहला तो नींद। कौन सी? अलबेलेपन की नींद में अगर राजा है तो शक्तियां सहयोग नहीं देगी। अलबेलेपन में है, आलस्य में है, विलासिता में अगर डूबा हुआ है, प्रमाद में है, तो शक्तियां सहयोग नहीं देगी। पहला है नींद। कौन सी नींद? अलबेलेपन की नींद। दूसरी अल्पकाल की प्राप्तियों का नशा। नशा कौन सा? हमने ये पा लिया, वो पा लिया, ये पा लिया, थोड़ा बहुत पा लिया और थोड़ी बहुत उपलब्धि है और उसका ही ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या पाया? कुछ नहीं पाया। पाना अभी बहुत है। जो पाया वो संसार का है, वो अल्पकाल की प्राप्ति है। ईश्वरीय संपदा को कितना आत्मसात किया है, अंगीकार किया है, ईश्वरीय पूंजी को हृदय में कितना समा के रखा है, वो है पाना। संसार की जो प्राप्ति है आसार। तो दूसरा अवगुण अगर राजा में है, अल्पकाल की प्राप्ति का उसे नशा आ गया, तो शक्तियां सहयोग नहीं करेगी। तीसरी व्यर्थ संकल्प के नाच में मस्त। अगर राजा ही व्यर्थ संकल्प में है, व्यर्थ संकल्प के नाच में व्यस्त है, तो शक्तियां सहयोगी नहीं होगी। तो राज्य अधिकारियों से बाबा ने पूछा है। तीसरा फिर प्रकृति से बात की बाबा ने, हमको बात करनी है। क्या कहा प्रकृति के लिए? प्रकृति कौन है हमारी? बड़े ते बड़ी दासी। प्रकृति के लिए आज मुरली में क्या कहा बाबा ने? दो तत्वों की चर्चा की है आज की साकार मुरली में, आज की मुरली में। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, मेहनत है, परंतु निर्भय भी बनना है। तो तत्व भी है, तत्व खड़ा है अग्नि, क्या आ जाएगा? ज्वालामुखी फटेगा, उसकी चर्चा जरा कम है। धरती, धरती के लिए क्या कहा आज? वो तो पानी का है, धरती हलचल होगी ना, भूकंप, भूकंप से हलचल होगी। एक और पानी के लिए क्या कहा? 100 फुट उछलेगा, धरती को हप कर लेगा, तो फिर क्या करोगे? एक गुटके से सब कुछ हिला देगा। तो तत्व, तो पांच तत्वों की हलचल में ना आना है। बहुत ठंड, बहुत गर्मी और बारिश, ये तीनों ही हमारी स्थिति को प्रभावित रखे। आबू में ये तीन चीजें होती है, बारिश। बारिश होते ही कई लोग कहते पुरुषार्थ थोड़ा कम हो गया है, धूप बहुत है तो गर्मी इतनी है, क्या गर्मी को सहन नहीं कर सकते, ठंड को सहन नहीं कर सकते, सब कुछ सहन करना है। बाबा ने कहा है वो भक्त, वो मुरली याद है ना कुछ समय पहले की, छह बातें, जैसे बाप की महिमा छह बातों में करते हो, वैसे बाप भी तुम्हारी महिमा छह बातों में तुम बच्चों को देखते हैं। सबसे पहला तो था उसमें नाम, उसके बाद में रूप, उस रूप में कहा था देवी देवताओं के मंदिर में जाने के लिए सर्दी गर्मी सहन करते, धरती और आकाश के बीच में बैठकर तपस्या करते हैं, खड़े होकर तपस्या करते हैं, त्रिशंकु की तरह लटके हुए, तो वो लोग इतना कुछ करते हैं, तुम नहीं सहन कर सकते। एक दिन फैन नहीं चला तो क्या होगा, कि नींद ही नहीं आएगी, आएगी ना, तो पास फिर प्रकृति के पेपर में। तो प्रकृति के पांचों तत्व, अग्नि, जल, वायु, तूफान, तूफान में भी अच्छा लड़ो, स्थूल तूफान, भूकंप, फिर उसके बाद में क्या, आकाश, आकाश से कौन सी प्राकृतिक प्रकोप होता है, बिजली, आग, अंगारे बरसेंगे, सब कुछ होगा, उन सब में अचल अडोल स्थिति, उसकी अभी से प्रैक्टिस करके रखनी है। प्रकृति की जो छोटी छोटी बातें होती है उसमें परेशान नहीं होना है, उसका ज्यादा वर्णन नहीं करना है, नहीं तो बस उसी के वर्णन में है, आज लाइन नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, आज बारिश ज्यादा हो रही है, इधर कितनी हुई, उधर कितनी हुई, यहां कितनी हुई, वहां कितनी हुई, बारिश का ही वर्णन, धूप बहुत ज्यादा है, अंगारे बरस रहे, क्या करे, एसी तो चाहिए एक। पांच तत्व क्या है तुम्हारे, बाबा ने कहा दासी है, बड़े ते बड़ी दासी है। तो प्रकृति जीत बनकर उसको ऑर्डर में चला रहे हैं वो, या वो तुमको प्रकृति पति को ऑर्डर में चला रही है। तो बाबा ने प्रकृति से बात की, मतलब हम प्रकृति से बात करें, एक अष्ट शक्तियां, तीन शक्तियां और ये कर्मेंद्रिया, ऐसा ये दरबार देखा। अष्ट शक्तियों के अलावा और कौन सी शक्तियां हैं, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, सत्यता की शक्ति, अनुभव की शक्ति, निर्भयता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति और साइलेंस पावर, योग बल, पवित्रता की शक्ति और ज्ञान की शक्ति और महसूसता की शक्ति और मनन की शक्ति। आगे मुरली में पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने बोला है, लास्ट लाइन, फर्स्ट पार्टी, मनन शक्ति को बढ़ाओ, शुभ चिंतन करो, मनसा सेवा करो और मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और सहन शक्ति तो आठ में आ गया ना, आठ छोड़कर, एकाग्रता की शक्ति, पावर टू कॉन्सेंट्रेट, और दृढ़ता की शक्ति, डिटर्मिनेशन, और कैचिंग पावर हो गया धारणा शक्ति, धारण करने की शक्ति, मनोबल, और ये सब मनोबल ही है, पावर टू अंडरस्टैंड, समझने की शक्ति। हाँ, बाबा ने तो कहा है समझ, ये समझ की बातें हैं, मुरलियों में ये बहुत आता है, ये सब समझ की बातें हैं। डिस्चार्ज क्या, निर्वाह करना, निर्वहन करने की शक्ति, सेवा, सेवा की शक्ति, पुण्य की शक्ति और संग्रह करने की और संग्राम करने की शक्ति। ये इस पर एक मुरली चली है, संग्रह क्या, संसार की वस्तुएं नहीं, ज्ञान, और संग्राम क्या, माया से संग्राम, युद्ध। तो संग्राम करने की शक्ति और संग्रह करने की शक्ति, इस पर भी एक मुरली है, और एडजस्ट होने की शक्ति, और दुआएं, आशीर्वाद भक्ति का शब्द है, दुआएं, निर्भयता की शक्ति और धारण करने की शक्ति, नम्रता की शक्ति, निश्चय का बल, निश्चय का बल और स्नेह हो गया, प्रेम स्नेह हो गया, त्याग की शक्ति, सहन करने, तो अष्ट में आ गया ना, अष्ट में आ जाता है वो, सहन करना, सामना करना, वो तो उसमें आ गया। और सहन शक्ति, अष्ट शक्तियां छोड़कर स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति ये भी है, स्मरण शक्ति, वैराग्य की शक्ति, ठीक है, लक्ष्य की शक्ति, और कौन सी शक्ति है, ग्रहण हो गया, स्वीकार करने की शक्ति, डिस्टर्ब ना होने की शक्ति। दादी जानकी जी ने एक क्लास में कहा था, डिस्टर्ब ना होने की शक्ति धारण करो, और धैर्यता की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां हैं, इन सब शक्तियों को भी रोज देखो। बाबा ने कहा रोज कचेरी करो, रोज देखो, चेक करो, चेंज करो, जो नहीं है उसको लाओ, देखो मुझ में कौन सी शक्ति नहीं है, उस शक्ति को वहां धारण करो। तो ये शक्तियां, फिर बाबा ने और एक कहा कि कंट्रोलिंग पावर से देखो क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है हमारी। पुराना खाता अब तक भी बचा हुआ है कि पूरा समाप्त कर दिया है? अगर है तो धर्मराजपुरी में, अगर ठीक नहीं है तो वहां ठीक करना पड़ेगा, अगर यहां फाइन नहीं भरा तो यहां, अगर तो रिफाइंड नहीं बने तो वहां फाइन भरना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मस्तक के टेबल, मस्तक को टेबल कहा, उसमें तीन फाइल है, कौन सी, ये नहीं किया, ये नहीं किया, एक दूसरा, ये चाहिए, ये करना है, ये फाइल में ही लगे हुए हैं तो खत्म कब करेंगे। नया वर्ष आ रहा है, पुराना वर्ष चला गया, पुराने खाते सब अभी तक, अगर चलाने वाले हैं तो क्या, जो चलाने वाले उनको चिल्लाना पड़ेगा, जो चलाने वाले उनको चिल्लाना पड़ेगा, एक एक सेकेंड एक एक वर्ष के समान होगा, दर्दनाक होगा वो आगे, विनाश काल में जो दृश्य है आगे बोला वो, कि उसमें जो दृश्य उसके, वो तो उसके सामने कुछ नहीं होगा, ऐसा चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। तो टेबल की बात की बाबा ने, टेबल पर फाइल, इनको कैसे पूरा करो, कैसे, शिव मंत्र से समर्पित कर दो, क्या कहा, शिव मंत्र से समर्पित कर दो इनको। परंतु कुछ कुछ है जो क्या करते हैं, वो तो आगे है, चलो उस पे आ जाओ, छिपाते हैं, क्या करते हैं, कोई कोई छिपाते हैं, और छिपाते छिपाते छोटा दाग भी बड़ा हो जाता है, कोई कोई है छिपाते और चतुराई से चलाते हैं, उनका दाग और ही गहरा हो जाता है, जैसे दाग कोई गहरा हो जाता है कपड़ा या कागज तो वो फट जाता है, वैसे ही यहां पर दिल फाड़ फाड़ के रोएंगे, मैंने किया मैंने किया, रबर लगाते और फिर दाग लग जाता है। ऊपर बोला ना सौगंध खाते हैं, धर्मराज स्वागत करेगा कराना है या सौगत, केवल सौगंध खाते हैं कि अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो केवल सौगंध खाने से नहीं होगा, दृढ़ संकल्प। बाबा ने कभी तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा दी है, जो गलती एक बार हुई उसको पुनः रिपीट न करना, ये इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, ये है तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है ये। एक गलती हुई फिर रिपीट की, एक गलती हुई लेटर लिखा बाबा को माफी मांगी फिर से गलती की, फिर लेटर लिखा फिर माफी मांगी और फिर से गलती की, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं। जो एक बार गलती की उसको समझना, वो क्यों हुई, क्या कारण है, किस बात की कमी है, चेक करो, चेंज करो और फिर आगे बढ़ो, ताकि पुनः वो गलती ना हो, ये है तीव्र पुरुषार्थ। फिर यहां दाग की बातें पापा ने की, इतना पश्चाताप करना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा, इतना चिल्लाना पड़ेगा, इसके लिए बाबा को रहम दिल, रहम आता है, इसके लिए तो कहा ना रहम दिल बनो, रूहानियत और रहम दो चीजें, रूहानियत और रहम, स्वयं के प्रति भी रहम दिल और औरों के प्रति भी रहम दिल। बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक्स बाबा ने बहुत सारे उसमें डाल दिए, जैसे व्यर्थ संकल्प की भी बात वहां करी, कि व्यर्थ संकल्प देखते, व्यर्थ देखते सुनते भी होली हंस की स्टेज में रहना है, केवल समर्थ को धारण करना है, बाप की गोदी में झूलते रहना है, तुम कौन हो, चमकीले ड्रेस वाले सदा सुहागन, तो नाखून भी तुम्हारा मिट्टी में नहीं जाता, नहीं तो इधर पहुंचते रहेंगे और वो पहुंच जाएगा। एक है भारतीयों की लिस्ट में आ जाएंगे, एक है इधर पहुंचते रहेंगे और वो पहुंच जाएगा साजन। तो वैसा ना हो जाए, हम भारतीयों की लिस्ट में ना आ जाए। तो इस तरह से बाबा ने कहा, स्वयं की चेकिंग करते रहो और चेंज करते रहो। रोज चेकिंग करनी है, रोज कचेरी लगानी है। अभी एक दूसरा दरबार भी है, वो कौन सा दरबार है? धर्मराज का दरबार। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? वो बड़ा कड़ा दरबार है, फाइनल स्टेज। बाबा ने कहा फाइनल स्टेज है, फाइनल रिजल्ट दिखाओ। उस दरबार में क्या होगा? जिनका यहां ठीक नहीं उनको वहां जाना पड़ेगा, उनको वहां फाइन कष्ट होगा, दुख झेलना पड़ेगा। एक एक सेकंड भी एक एक वर्ष के समान होगा, दर्दनाक दृश्य होगा। अब ये सोचो कि हम उस कटघरे में खड़े हैं, बेहोश हो गए अगली तारीख तो सबसे पहले किसको खड़ा करे? स्वयं को ही कटघरे में खड़ा कराओ। कौन किसको खड़ा करेगा? एक तो धर्मराज हमको कराए, उसके पहले हम ही अपने आप को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहले माताएं खड़ी हो जाओ, आज की अदालत माताओं के ऊपर। तो माताओं के ऊपर आरोप है क्या? माताओं के ऊपर आरोप है मधुबन में आ गए, मधुबन में सेवा कर रहे, रोटी बेल रहे, परंतु बीच बीच में किसकी याद आती है? बच्चों की याद आती है, पोत्रों धोत्रों की याद आती है, और आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ये आरोप है, क्या उत्तर है इसके लिए? कोई उत्तर? माताओं के ऊपर आरोप है ये दूसरा आरोप, फोन बजा और कई आत्माओं को सूक्ष्म वतन से, कईयों को परम धाम से नीचे लाने के निमित्त बने। माताओं का सबसे पहले तो फोन बजा, आधा मिनट ये समझने को लगा कि मेरा फोन बज रहा है, आधा मिनट चेन खोलने में लगा है, पहली चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन खोली, फिर बंद की, खोली फिर बंद की, फिर बंद की, फिर एक खाने से मोबाइल निकाला, फिर मोबाइल को दृष्टि आधा मिनट, उसमें से बटन कौन सा है ढूंढने के लिए। तब तक मोबाइल की घंटी बज रही है, बज रही है, आत्माएं परम धाम से नीचे कुछ कुछ गिर गई, कईयों को फ्रैक्चर हो गया, कुछ सूक्ष्म वतन से अभी नीचे है, आ रही है देखने के लिए कौन है वो। अभी दृष्टि दे रही है मोबाइल को, सोच रही है कौन सा बटन है। फिर किसी ने कहा माता जी बाहर जाओ, जाते जाते भी घंटी बज रही है, गेट के बाहर जाने के बाद फोन उठाया और जोर जोर से बातें करना चालू किया, और थोड़ी देर बाद फिर योग में वापस, चाहे मुरली चाहे बाबा का कमरा। तो माताओं के ऊपर आरोप है, कईयों को चोट लगाई, कई गिरे ऊपर से नीचे। तो इसके लिए क्या उत्तर है माताओं के पास? ये आरोप लगाया है धर्मराज ने, या स्वयं पर आरोप लगा दो आज माताओं पर बहुत सारे आरोप है, और भी कुछ आरोप है। अपने बच्चों को जो ज्ञान और योग की पालना देनी थी वो नहीं दी, और जब वो नरकवासी बन गए तो कहा कि इनकी तकदीर में नहीं था। क्या कहा बाद में? कि इनकी तकदीर में नहीं है तो हम क्या करें? जो पालना देनी चाहिए थी, जो ज्ञान और योग की पालना देनी चाहिए थी, जो वाइब्रेशन देने चाहिए थे वो नहीं दिए। तो ये भी आरोप है धर्मराज लगाए या हम स्वयं पर लगाए? कुमारों के ऊपर क्या आरोप है? सारी दुनिया छोड़कर यहां आ गए और यहां ही एक नया संसार स्थापन कर लिया अपना, और क्या आरोप है? संसार के वैभव को छोड़कर आ गए और यहां किसमें लग गए? परचिंतन परदर्शन में, क्या करने आए थे? बाबा ने अव्यक्तवाणी 3 तारीख में प्रश्न पूछा है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? भले नंबरवार है परंतु जीवन का लक्ष्य क्या है, एक प्रश्न है। उत्तर नहीं दिया पर एक प्रश्न उस मुरली में है। भले नंबरवार है परंतु जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? कटघरे में खड़े, तुम पर आरोप है कि तुमने यज्ञ की चोरी की है, आरोप है तुम पर कि तुमने टाइम बहुत वेस्ट किया है, आरोप है तुम पर कि साधनों के वश हो गए, मोबाइल टीवी और इंटरनेट में लग गए। आए क्या करने थे और कर क्या रहे हो? तपस्या करने के बजाय क्या कर रहे हो? धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर आए थे, यहां सब कुछ फिर से निर्माण कर रहे हो, ये आरोप है। कहते हो बहन पर दृष्टि देह की ओर है, ये आरोप है। अभी तक आत्मिक दृष्टि की साधना पक्की नहीं की है, ये आरोप है। अभी तक तपस्वी कुमार नहीं बने हो, कुमार तो बन गए, ब्रह्मा कुमार तो बन गए परंतु तपस्वी कुमार नहीं बने हो, तपस्वी मूर्त नहीं बने हो, ब्रह्मचर्य की वो शक्ति अभी भी धमनियों में अग्नि की तरह स्पंदित नहीं हो रही है। जितना शक्तिशाली तुमको बनना चाहिए था उतना नहीं बने हो, जितनी धारणाएं तुम कर सकते थे, जितनी शक्तियां तुम में थी वो तुमने अभी तक यूज नहीं की है, ये आरोप है। स्वयं स्वयं को आरोपित करो, नहीं तो धर्मराज आरोप लगाएगा। और कौन है? अधर कुमार, उनके ऊपर क्या आरोप है सुशील भाई? अपने आरोप अपने आप ही बता दो, इससे पहले कि धर्मराज आरोप लगाए। तुम्हारे ऊपर आरोप है कि अवसर था, समय था, परिस्थितियां भी अनुकूल थी, फिर भी अपने घर को ईश्वरीय यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, फिर भी अपने घर को गीता पाठशाला में रूपांतरण नहीं किया, ये आरोप है तुम पर। जबकि भगवान कह रहा था यहां संसार में इंटरनेशनल रोला चल रहा है, वो डेटी नेशनैलिटी दैवी राष्ट्रीयता का हिस्सा नहीं बने, तो ये आरोप है। जितना समय सेवा को देना चाहिए था उससे ज्यादा समय किस में लगाया? धंधा दोरी, यहां वहां भटकने में, ये वो कमाने में, अल्पकाल की प्राप्तियों में, ये आरोप है। कुमारियों पर क्या आरोप है? कुमारियां खुद बता दे। राइट हैंड बन सकती थी परंतु कौन सा टोकरी अच्छी लगी? उधर की टोकरी अच्छी लगी। और क्या आरोप है? स्वयं स्वयं पर आरोपित करो, लिखो खुद ही तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, यहां क्या और बताना। तो बाबा कहते हैं स्वयं ही ये धर्मराज का दरबार है, कड़े कड़े प्रश्न, यहां पर कोई इप्स बर्ड्स कुछ बोलने की अवसर नहीं दिया जाएगा तुमको। अगर तुमने अपनी सफाई में कुछ कहा तो वहां पर एक कंप्यूटर है बड़ा, फट 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 डेट और टाइम सहित स्क्रीन में दिखाया जाएगा, देख लो। तुम पर आरोप है कि तुमने बार बार झूठ बोला था, तुमने अगर कहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला, एक मिनट, ऑडियो वीडियो सहित कोई नहीं छूटेगा। बाबा बिना साक्षात्कार कराए सजाए नहीं देंगे, बार बार मुरलियों में आता है। ये सजाए क्या है? मानसिक पीड़ा, मानसिक वेदना, एक सेकंड में ही कई जन्मों के कष्ट पीड़ा दुख की अनुभूति। कोई एक अलग से धर्मराज नहीं बैठा है दंडा लेकर, ये आत्मा को स्वयं ही अनुभव होगा कि क्या करने आए थे और क्या कर दिया। स्वयं ही पश्चाताप होगा, स्वयं ही दुखी होंगे, पश्चाताप। बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल किसके लिए बैठेगा? संसार की आत्माओं के लिए ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगा। जो बाप का बनकर ट्रेटर बन गए उनके लिए ट्रिब्यूनल है, जो बाप का बनकर श्रीमत पर नहीं चले उनके लिए ट्रिब्यूनल है। तो इस तरह से स्वयं की कचहरी करो। हम दो बातें इसमें और भूल गए, खयानत, खयानत क्या है और मिलावट क्या है। तो खयानत किसको क्या बाबा ने, जो खजाने, जो तीन खजाने, तीन शक्तियां बाप ने दी थी स्वकल्याण और विश्व कल्याण के लिए, वो किसमें लगा दी, व्यर्थ में और अकल्याण की बातों में लगा देना, ये है ख्यानत। और मिलावट क्या है, परमत और जनमत। भाषा उनकी रॉयल होगी, बात तो वैसे ही करेंगे, कहेंगे मुरली के शब्द भी वैसे ही होंगे, परंतु अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव को भूलकर शव में लटकेंगे, शिव को भूलकर शव में लटकेंगे, कहेंगे, दिलासा देंगे स्वयं को, ये तो होता ही है, कौन देखता है, इस तरह से बोल उनके होंगे। रूप श्रीमद जैसा ही होगा, परंतु बाबा ने कहा दूसरों को धोखा देना, ये तो जैसे तुम स्वयं को दुख दे रहे हो, एक का हजार गुना दुख जमा कर रहे हो। तो ना तो मिलावट हो, ना तो ख्यानत हो, ना तो धोखा। हम धोखा दे किसको रहे, स्वयं स्वयं को ही तो धोखा दे रहे, और किसको धोखा दे रहे। सबसे बड़ा धोखा ही इसको आत्मघात कहो, या फिर एक और एक अच्छा शब्द है इसके लिए, प्रवंचना, प्रवंचना, आत्म प्रवंचना कहते हैं इसे हिंदी में, सेल्फ डिसेप्शन। कौन किसको धोखा दे रहा है, पहला प्रश्न ये है, मैं धोखा दे किसको रहा हूं। जताने की कोशिश कर रहे हैं हम योगी है और तपस्वी है, परंतु अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और। इसके लिए बाबा ने कहा कि हाँ, सच्चा बनो, छिपाओ नहीं, सच्चा बनो। अगर सच्चा बन के जो है जैसा है वो बाप के सामने रख दो तो बाबा मदद करेगा, परंतु छुपाओगे तो बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। सर्जन बैठा हुआ है, उसको बताओ। ऐसा नहीं, कोई कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, अभी तो हम बीमार है ना, एक बार डॉक्टर को दिखा देना। अभी कैसे जाए डॉक्टर के पास, पहले पहले ठीक तो हो जाओ फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, चलने की तो हालत हो, अभी तो इतनी तबीयत खराब है, बुखार चल रहा है, उठा भी नहीं जाता है, अरे एक बार दिखा तो लो, ठीक तो हो जाने तो बाद में जाएंगे, ऐसे भी कहते हैं कोई लोग। और जब ज्यादा सीरियस हो जाते तो तब जाते हैं फिर आईसीयू। तो यहां पर भी जब थोड़ी बहुत बीमारी है तो तुरंत चले जाओ डॉक्टर के पास, तो यहां रूहानी सर्जन बैठा हुआ है, ठीक कर देगा, आधा माफ। वैसे तो ड्रामा में माफी होती नहीं, परंतु वो माफ इसके लिए है कि हल्के हो जाओगे, फिर से दोबारा वो गलती रिपीट नहीं होगी। इसके बाद में बाबा ने दो विशेषताएं देखी ब्राह्मण आत्माओं की, पहली कौन सी, विशेषता, और दूसरी कौन सी, अनुभव। पहली विशेषता, बाप दादा बच्चों को किस नजर से देखते हैं। बाप दादा बच्चों को देखकर अति हर्षित है, तीन तारीख की मुरली, क्योंकि शुरुआत मुरली की, क्योंकि बच्चे बाप को, बाप के मिलन में हर्षित है, बच्चे बाप को देखकर या बाप से मिलकर हर्षित है, मिलन में हर्षित है, इसके लिए बाप भी हर्षित है। तो बाबा किस नजर से सब बच्चों को देखते हैं, विशेषता की नजर से देखते हैं, हर एक बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे कैसा भी हो, परंतु विशेष आत्मा है, इसके लिए तो इस विशेष परिवार में आ गया। तो इसके लिए तुम भी किसी के संबंध संपर्क में आते हो तो क्या करो, विशेषता को देखो और लाभ लो, काम में लगाओ। यहां बाबा ने पांच उदाहरण दिए हैं अपनी बात को समझाने के लिए, पांच उदाहरण। पहला उदाहरण स्वयं का ही, उसका खुद का उदाहरण, जैसे बाप होपलेस में भी होप वाला बना देता है, वैसे चाहे कैसी भी आत्मा हो, उसकी विशेषता से तुम क्या करो, उसकी जो विशेषता है उसको कार्य में लगाओ, लाभ लो उससे। तो ये बाबा ने पहला उदाहरण स्वयं पर ही दिया है। दूसरा, तुम सब कौन हो, ज्वेलर्स हो, दूसरा ज्वेलर का उदाहरण दिया है। तो ज्वेलर क्या देखता है, हीरे को देखता है, पत्थर को नहीं देखता है। तो ये तुम्हारा पार्ट है हीरो, युग है हीरे तुल्य। अच्छा इधर बज रहा है धर्मराजपुरी तो युग है हीरे तुल्य, पार्ट है हीरो, हीरो और देखो हीरा। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, बाबा ने अगर कहा ये अगर करो तो ये संगम युग की विशेषता है, ये अगर कहो इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, ये अगर करो तो ये लहर सारे विश्व में फैलेगी शुभ भावना की, किरणें सारे संसार में फैलेगी। दूसरा, तीसरा उदाहरण अब बताओ, पांच उदाहरण दिए बाबा की मुरली, बाबा जो बोलते हैं हर चीज का उदाहरण दे देकर स्पष्टीकरण करते हैं अपनी बात का, संसार के उदाहरण होते हैं वो सारे। जैसे बचपन, बचपन में चलने में मेहनत होती है, बाबा के पास जाकर जो कुछ हमने किया है वो उसको जो सबसे प्राइवेट बात है वो उसको बता के नीचे आ जाओ। तो बचपन में मेहनत करते हैं किस लिए? चलने के लिए। तो अर्थात ये मेहनत क्या है? बचपना है। इसके लिए सहज योग, अगर कोई भी बात आती है तो वहां क्या कर दो, मुश्किल होती है तो बाबा को रख दो, तो बाबा क्या कर देगा? जैसे सागर का उदाहरण दिया। चौथा, सागर क्या करता है? कीचड़े को किनारे पर कर देता है, तो बाप भी बोझ को समाप्त कर देगा। अंतिम उदाहरण दिया कौन सा? जैसे पंडा होता है उसको भूल जाते हैं तब रास्ता मुश्किल लगता है, तो उसको सदा साथ रखना है। शुभ भावना रखो, शुभ मनसा सेवा करो और मनन की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा तुम कौन हो? मजदूर नहीं हो, तुम अधिकारी हो। मेहनत कौन करता है? मजदूर। जैसे एक व्यक्ति विदेशी भारत में आया और देखा कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मजदूरों से मिल रहा है, वो पहले मजदूर के पास गया, उसको पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, उस मजदूर को बहुत गुस्सा आया, क्या तुमको आंखें नहीं है, देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, कठोर कड़क पत्थर, इतने हार्ड स्टोन्स उसको मैं तोड़ रहा हूं, सारा जीवन मेरा पत्थर तोड़ने में चला गया, पता नहीं अब कब तक मैं ये तोड़ता रहूंगा, आज तक मेरा न पेट भर पाया, कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा जीवन ही जैसे मेरा बर्बाद हो गया, और उसमें से तुम मुझे परेशान करने आ रहे हो, जाओ यहां से। वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं क्या आजीविका कमा रहा हूं बस, और क्या, दूसरा तो मेरा कोई काम ही नहीं, सारा जीवन इसमें गया है और ये कर रहा हूं। तो कहता है ठीक है। तीसरे के पास जाता है जो बड़ा ही नाचते हुए पत्थर तोड़ रहा है, झूम रहा है, डांस कर रहा है, उसको पूछता है भाई तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैं तो भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं। कितनी खुशी है उसको, मैं ऐसा आलय बना रहा हूं कि जिसमें भक्त आएंगे और परमात्मा प्रेम में मगन हो जाएंगे। एक ही काम, तीन व्यक्ति, परंतु स्थिति सबकी अलग अलग। हम यहां सेवा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं? माताओं को क्या लगता है, पत्थर तोड़ रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? मगन है। बाबा ने कहा सेवाधारी की, सेवाधारियों से मुलाकात में भी कहा, सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी में नंबर आना, बाप क्या है? सेवाधारी है। तो सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना, कितना ऊंचा सम्मान दे दिया बाबा ने। सेवा का चांस यही लॉटरी है। तो ऐसा लगता है उस कौन से मजदूर जैसी हमारी स्थिति है, पहला या तीसरा? अपने आप को देखना, कोई भी सेवा करते हुए हम क्या कर रहे हैं, किस नशे में रहते हैं, ब्रह्मा भोजन बना रहे, या फिर देखो यहां लाइट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सुबह से लगे हुए हैं, कोई पूछता नहीं, थक गए। बाबा ने जिस धर्म की स्थापना की है वो एक नया धर्म है, नाचता गाता धर्म है, ऐसा दिव्य धर्म है। अब तक के जितने धर्म हुए हैं, अब तक की जितनी संस्कृतियां हैं, सब मरी हुई संस्कृतियां हैं, थकी हुए थके हुए धर्म है। परमात्मा ने जो धर्म स्थापन किया है वो एक नाचता सन्यासी है। कौन है वो? एक रमता योगी है, उड़ता योगी है। वो तो अग्नि पर चलते हैं, तुम तो विकारों की अग्नि के ऊपर चलते हो, वो तो पानी के ऊपर चलते हो, तुम तो कुसंग के पानी के ऊपर चलते हो, वो तो धरती के ऊपर चलते हो, तुम तो देहभान की धरती के ऊपर चलते हो। वो है रमता योगी और तुम हो उड़ता योगी। एक मुरली में बाबा ने कहा है ये, तो कितना ऊंचा हमारा सम्मान है। दूसरी विशेषता है ब्राह्मणों की, अनुभव। क्या विशेषता है? अनुभव, हर गुण, हर शक्ति का अनुभव। ज्ञान तो बहुत है परंतु अनुभव ही मूर्त बने हैं। प्रश्न पूछा, तीन उदाहरण दिए यहां पर। जैसे प्रेम, प्रेम स्वरूप आत्मा, आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, तो वो प्रेम स्वरूप में आया है जो स्वयं को भी लगे और दूसरों को भी अनुभव हो। केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी रूहानी आकर्षण हो उस प्रेम से। पहला उदाहरण। दूसरा, खजाने कहां रखे जाते हैं? अगर लॉकर में रखे जाए तो खुशी नहीं होती है। अगर इन खजानों को भी केवल बुद्धि में रखा जाए और यूज ना करे तो खुशी नहीं होगी। एक है अनुभव के बोल, एक है ज्ञान के बोल, इसमें बहुत अंतर है। बाबा ने कहा, और उसमें और भी बात कही कि कितना अनुभवी मूर्त बना हूं। विवेकानंद ने कहीं धर्म की परिभाषा दी है, रिलीजन इज रियलाइजेशन, एक ही शब्द की परिभाषा है। धार्मिक उसे कहा जाएगा जो अनुभवी मूर्त है। चाहे कितने भी वेद शास्त्र उपनिषद और सब कुछ पढ़ रखा है, कंठस्थ कर लिया है, परंतु यदि उसे अनुभव नहीं है तो उसे धार्मिक आस्तिक नहीं कहा जाएगा। रिलीजन इज रियलाइजेशन, एक ही शब्द की परिभाषा है। तो जो अनुभवी मूर्त है, केवल ज्ञानी होने से नहीं होगा, अनुभवी मूर्त, हर बात का अनुभव, हर ज्ञान का अनुभव, ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभव, गुणों का अनुभव, एक एक गुण का अनुभव, एक एक शक्ति का अनुभव, वो है धार्मिक बनना। तो खजानों को क्या करो, बाबा ने कहा, यूज करो। और अनुभवी मूर्त, और एक उदाहरण दिया, केवल खजानों को यूज नहीं, जब जिस गुण या शक्ति की आवश्यकता है उसको उस समय यूज करो। ऐसा नहीं कि दुश्मन आक्रमण करे और तलवार चले ही ना, या फिर वो उधर से तीर कमान बाण मार रहा है और हम इधर से तलवार से लड़ रहे हैं, वहां तो ढाल की आवश्यकता है। तो कब ढाल और कब तलवार, ये निर्णय। तो ये विशेषता कौन सी है? अनुभवी मूर्त। तो जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उसको धारणा में लाने का प्रयास करना है, समझना है उसको। सबसे पहले जितना गहराई से इन चीजों को समझेंगे उतनी ही वो धारणा से आएगी, धारणा में आएगी। केवल गए और मुरली पढ़ लिए और आ गए, इसको तो समझने के, ये जो मुरली है भाषा हमें कैद है जैसे, पहले तो इस भाषा को समझना पड़ेगा, बाबा के भाव को समझना पड़ेगा, भावार्थ, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, सब कुछ समझना पड़ेगा। किस संदर्भ में ये कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, इन सभी बातों को समझना पड़ेगा अगर उसको समझना है तो। ये तो हो गया कल की मुरली। जो 3 तारीख की मुरली थी उसमें होमवर्क बताओ अब क्या दिए। एक तो हमने बोल ही दिया, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है इसको सबसे पहले निर्धारित करो। केवल ये मत कह दो कि बाप समान बनना है, अव्यक्त बनना है, कर्मातीत बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, अशरीरी बनना है। लक्ष्य क्या है, ये तो अंत लास्ट है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे। जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी उस दिन ओपीडी में एक 5 साल का बच्चा आया था, उसको सोनोग्राफी के लिए भेजा, उसके घर में सभी डॉक्टर्स है। जब उसका सोनोग्राफी चल रहा था तो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर ने पूछा, तुम क्या बनोगे? तो उनके माँ बाप ने कहा, ये डॉक्टर बनेगा। बोले, डॉक्टर नहीं, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, 5 साल का बच्चा है, पेट का डॉक्टर। अभी उसका लक्ष्य देखो कितना ऊंचा रखा है उसने, उसको पता भी नहीं क्या है, पर वो स्पेशलाइजेशन का सोच रहा है 5 साल की उम्र में। परंतु अगर वो केवल यही कहे कि मुझे ये बनना नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीजें तब तक उसको करना पड़ेगा। उसके लिए तो सबसे पहले वो 5वीं कक्षा में वही उसको पास करना पड़ेगा, तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इतनी जो कमी कमजोरी हमारे अंदर है, वो लक्ष्मी नारायण बनना और वो जो भी है वो तो बहुत आगे की बात है, परंतु आज दिन का लक्ष्य क्या है, आज सारे दिन क्या करना है, कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है। खजानों को भी चेक करो, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं व्यर्थ संकल्पों पे नहीं है, कभी अभी तक भी पुराने संस्कार विकार अटैक तो नहीं करते, उनको जीतना एक एक करके। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, इंग्लिश में कहावत है, हर दिन एक एक वासना को खत्म करते जाओ। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, हर दिन एक एक कमजोरी को नष्ट करते जाओ। तो लक्ष्य हमको ऊंचा रखना है, परंतु उसके साथ ये सब भी होता रहे, पुरुषार्थ साथ साथ। तो क्या होमवर्क दिया? एक तो भले नंबरवार है, परंतु तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हर एक ने निकालना है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पहला होमवर्क। दूसरा, पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ना है। अगर बाप से कनेक्शन ही नहीं तो शक्ति कहां से आएगी, अगर बाप की याद ही नहीं तो शक्ति कहां से मिलेगी। संबंध एक से है, यह है दूसरा, कि आगे से आगे बढ़ना है। तीसरा, बीमारी आ जाए तो याद में रहना है, तो क्या हो जाएगा, सूली से कांटा बन जाएगा। और और भी कुछ है, अपने आप को संभालना है, वो हेल्थ के लिए कहा, ब्लेसिंग से चल रहे हो ये भी कहा, और प्रत्यक्षता की परिभाषा दी बाबा ने, सब कुछ करते हुए सर्व संबंध एक से रखना, ये है प्रत्यक्षता। और भी कोई होमवर्क? समान को याद करना, उस मिलन मुलाकात को याद करना, हमारी स्मृति में जैसे वो गूंजते रही, जैसे सूरज भाई बता रहे थे ना उस दिन, कौन आया? डैडी आया ना हमारा। तो वो संबंध कभी टूटे ना, उसका जो समीपता सामीप्य का जो अनुभव है वो हमेशा ही रहे और सदा रहे, सदा वो हमारे साथ है। चित्र देखो, कौन से चित्र देखो? मनाई उस चित्र को देखते रहो, और जितना हो सके हमारे जीवन का लक्ष्य हो कि हम दूसरों को कुछ ना कुछ दे। एक छोटी सी कहानी बताकर इस व्याख्यान को यहीं अंत करता हूं। एक अस्पताल में दो मरीज थे, कैंसर का अस्पताल, दो मरीज, एक खिड़की के पास एक उसके बाजू में, दोनों ही बड़े सीरियस, क्रिटिकली इल जिसको कहते हैं, और कई सालों से थे। वो जो खिड़की वाला था उसको दिन भर में केवल एक ही बार उठकर वो बैठ सकता था, एक घंटे के लिए शाम में, उतनी उसको इजाजत थी कि वो एक घंटा बैठे ताकि उसकी छाती में जो कैंसर फैला है और जो पानी भरा है वो थोड़ा सा ड्रेन हो। दूसरा मरीज है, उसको ये आदेश था कि वो बस लेटा हुआ रहे, बिल्कुल फ्लैट, कभी उठे ही ना, बस वैसा ही, क्योंकि कैंसर पूरा उसके स्पाइन में घुस गया था। तो वो दोनों मरीज बड़े मिलिट्री वाले थे, आपस की बहुत बातें करते थे, और जब ये दूसरा मरीज जो था, जो खिड़की के पास वाला था, एक घंटा जब उठ के बैठता था तो वो दूसरे मरीज को वो सारी बातें बताता था जो वो खिड़की से बाहर देख रहा है। वो बताता था कि कितना अच्छा सरोवर है, तालाब है, बच्चे खेल रहे हैं, उसके पीछे पर्वत है। कभी बताता था यहां से क्या जा रही है, बारात जा रही है। और जो ये दूसरा मरीज था उसको तो बेचारे को तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं, तो वो मन ही मन वो सारी चीजें सोचता था, जैसे कि वो एक घंटा उसके जीवन का सब कुछ था। वो इंतजार करता था कब वो एक घंटा आ जाए, और वो जैसे ही सुनाने लगता था बाहर की खिड़की की बाहर जो भी दिख रहा है, इसको बड़ा खुशी का अनुभव होता था। उसको लगता था वाह कितना, जैसे वो जीता था वो उस पल को, वो एक घंटे को। वो कभी बताता था पंछी उड़ रहे, बच्चे तालाब में नाव चला रहे, कभी तो कोई प्रेमी आपस में हाथ डाल के घूम रहे हैं, जो कुछ उसको दिखता था। और कई सालों तक वो नई नई बातें, उसको हर दिन नई नई बातें बताता रहा, और उसको बहुत खुशी होती थी, जैसे कि उसको जीवन का जैसे एक सहारा मिल गया ये दूसरे पेशेंट को, जो कि ये वजू में था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो खिड़की वाला मरीज था रात में ही शरीर छोड़ दिया। सुबह सुबह सिस्टर परिचारिका आई, उसने देखा ये तो गया, इसकी डेड बॉडी को यहां से शिफ्ट कर दो। फिर ये जो मरीज था इधर वाला, उसने कहा कि क्या मैं अपना बेड शिफ्ट कर सकता हूं अगर कोई दूसरा पेशेंट नहीं आ रहा हो उस बेड पर। सिस्टर कहती है ठीक है इस बेड पे आ जाओ, खिड़की वाले। और फिर वो सिस्टर से और एक रिक्वेस्ट करता है, मैं एक बार देखना चाहता हूं इस खिड़की के बाहर क्या है, क्योंकि मैं कई सालों से सुन रहा हूं, हर दिन नई नई चीजें देख रहा हूं, और वो तो बेचारा चला गया, पर मुझे एक बार देखने दो बस, कैसे भी करके जस्ट एक बार। और उठ के देखता है तो सामने एक दीवार और कुछ नहीं। वो पूछता है सिस्टर से, वो पेशेंट ने तो मुझे इतने सालों तक कई सारी बातें बताई, आज ये दिख रहा है, कल इंद्रधनुष दिख रहा है, कभी उसको कुछ दिख रहा है, कभी बारात तो कभी परेड जा रही है वहां से, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, वो सब कहां है? सिस्टर उससे कहती है कि शायद उसने तुम्हें बहलाने के लिए कहा, वो तो अंधा था। जो पेशेंट है जिसने शरीर छोड़ दिया वो ही वॉज ब्लाइंड, तो देखो उसको पता था कुछ है नहीं, परंतु उसने जीवन का लक्ष्य रखा जो बाजू में है, जितना हो सके मैं उसको सुख दू, खुशी दू उसको, उसके जीवन में तो कुछ है ही नहीं, सामने तो दीवार थी और वो खुद अंधा था, क्या बता रहा होगा। तो जीवन का लक्ष्य बाबा ने कहा खुश रहना और खुशी बांटना, तो इसको भी लक्ष्य रखो। ओम शांति।